أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں بھائیوں اور درشکوں آپ سبھی کو میرا سلام جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں احکام کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں ہم نے اپنے پچھلے کچھ پروگرام سے نماز اور ان سے سمبندھت احکام کے بارے میں بات چیت کو آرمبھ کیا تھا ابھی جو پچھلا پروگرام تھا اس میں ہم نے مسجد کے احکام کے بارے میں بات چیت آرمبھ کی تھی اور آپ کے سامنے ان چیزوں کو بتایا تھا ان چیزوں کے بارے میں جو احکام ہیں آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو مسجد میں کرنا حرام ہے اور ایک مسلمان کو ایک انسان کو مسجد میں وہ کار نہیں کرنے چاہیے آج ہم اپنے اس پروگرام میں اسی مسجد کے احکام یا احکام مسجد کو آگے بڑھاتے ہوئے بات چیت کریں گے ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کے سامنے ان باتوں کو بتائیں گے جو کاریہ مسجد میں کرنا مستحب ہیں اور ان کاریوں کے بارے میں بتائیں گے جو مسجد کے اندر کرنا مکروہ ہیں اور نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد اگر ہمارے پاس سمے بچتا ہے تو ہم اذان اور اقامت کے مسائل کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے تو جو چیزیں ایک مسلمان کو کرنا چاہیے مسجد میں اور جو مستحب ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ پریتن کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے مسجد کے اندر جائے یہ اذان کا سمے جب ہونے لگے تو سب سے پہلے پریتن کرے سب سے پہلے وہ پہنچے مسجد میں اور اس کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جب سارے نمازی سارے مسلمان مسجد سے نکل جائیں تو اس کے بعد نکلے یعنی پرویش میں سب سے پہلے اور جب باہر نکل رہا ہے تو سب سے بعد میں اور یہ بھی مستحب ہے کہ مسجد میں وہ چراغ روشن کرے روشنائی کرے یعنی اگر آج کے زمانے میں بلب اور ٹیوب لائٹس وغیرہ لگی ہیں تو ان کو روشن کرے ورنہ پہلے زمانے میں جیسے یا آج کے ہمارے گاؤں میں جہاں لائٹ نہیں پہنچی ہے ابھی وہاں چراغ روشن کرنا لالٹین جلانا یہ کار کرنا مستحب ہیں اور مسجد کو صاف ستھرا بنائے رکھنا جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلے کسی پروگرام میں ہی بتایا تھا کہ اسلام نے سوچھتا کے اوپر بہت تاکید کی ہے اور سوچھتا کا بہت مہتو بیان کیا ہے یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں بھی ہے جیسے کہا گیا ہے النظافت من الایمان کہ سوچھتا اور صفائی ایمان کا ایک ابھن انگ ہے اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ سوچھ ہوگا تو یہاں پر بھی وہی بات کہی گئی کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ استھان جس پہ وہ ایشور کی بات کر رہا ہے جہاں پر وہ نماز کے لیے جا رہا ہے جس کو مسجد کہتا ہے اس کی صاف صفائی اور سوچھتا کا دھیان رکھے اور جس سمے انسان مسجد میں پرویش کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ داہنا قدم پہلے مسجد کے اندر رکھے اور جب باہر نکل رہا ہے تو بائیں قدم سے باہر نکلے جاتے سمے داہنا اور واپس آتے سمے بائیں پیر کا خیال رکھے اس طرح سے اندر جائے اور باہر آئے اور ایک چیز جو مستحب ہے کہ جس سمے انسان مسجد میں پرویش کرے تو دو رکعت نماز پڑھے جس کو نماز تحیے مسجد کہتے ہیں یا مسجد کے سمان میں دو رکعت نماز پڑھے یعنی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مثلا اگر انسان کسی ایسے سمے جاتا ہے جب نماز کا سمے نہیں ہے وہ ایسی مسجد جاتا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جائے اور جا کے واپس چلا آئے بنا ایشور کی عبادت کیے ہوئے ایسے سمے پہ کہا جاتا ہے کہ مستحب ہے کہ انسان جب مسجد میں جائے تو کم سے کم دو رکعت نماز تحیے مسجد پڑھے جس کو ہم اگر اپنے ہندی میں انواد کریں تو مسجد کے سمان میں دو رکعت نماز پڑھے اور جیسا کہ ہم نے وہی سوچھتا کے بارے میں کہا ہے کہ جس سمے انسان مسجد میں جا رہا ہے مسجد میں پرویش کرتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب وہ پرویش کر رہا ہے تو اپنا بہترین لباس پہنے پریس کیا ہوا لباس پہنے خوشبو لگائے اس پرکار کے کارے کریں تو یہ وہ کارے تھے جو مستحب ہیں اس کے علاوہ بہت سے کارے ہو سکتے ہیں جو مستحب کی شرنی میں آئے لیکن ہم نے آپ کے سامنے صرف سنکھیپ میں بتائے ان کاریوں کے بارے میں جو اکثر ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں یہ سب وہ کارے تھے جو مستحب ہیں لیکن کچھ کارے ایسے ہیں جو مسجد میں انسان کو کوشش کرنا چاہیے نہیں کرے وہ ان کاریوں کو مکروہ کہا جاتا ہے जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो मकरूह है वो अज़ान का स्थान, जिसको हम गुलदस्ते अज़ान भी कहते हैं, अज़ान के स्थान को मस्जिद की छत से ऊंचा बनाना, ये मकरूह है। यानी मस्जिद की छत से ऊंचा नहीं होना चाहिए अज़ान कहने का स्थान। और दूसरी चीज़, मस्जिद को रास्ता बनाना, यानी अगर मान लीजिए एक एक रास्ता, एक इधर दरवाज़ा है, एक तरफ दूसरा दरवाज़ा उस तरफ है, तो इंसान एक तरफ से दरवाज़े से जाए दूसरी तरफ निकल जाए बिना नमाज़ पढ़े हुए, तो मस्जिद को रास्ता बनाना भी मकरूह है। इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए एक तरफ से जाए दूसरी तरफ निकल जाए और नमाज़ भी ना पढ़े। कम से कम अगर ऐसा कार्य कर रहा है तो कम से कम 2 रकात नमाज तहिए मस्जिद उसको अवश्य पढ़नी चाहिए, ताकि ये कराहियत और ये जो मकरूह है वो समाप्त हो जाए। और मस्जिद में थूकना, नाक का फेंकना, इस प्रकार की गंदगी करना, ये भी मकरूह है, मस्जिद में ये कार्य नहीं करना चाहिए। और अगर इंसान कर रहा है, जाहिर है जो हमने ऊपर बताया था कि मस्जिद को स्वच्छ रखे, साफ रखे, वो नहीं हो सकता, इसलिए इंसान को चाहिए ये कार्य न करे और ये मकरूह है। मस्जिद में सोना, ये भी मकरूह है, मगर ये कि इंसान विवश हो, कभी कभी ऐसा होता है इंसान बहुत थका हुआ है, कोई स्थान नहीं है उसके पास सोने के लिए, तो सो सकता है, लेकिन ऐसे आम हालात में इंसान के लिए सोना मस्जिद में मकरूह है। मस्जिद में चीखना, चिल्लाना, तेज़ आवाज़ में बातें करना, इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए, ये मकरूह है। मस्जिद में बेचना, खरीदना और दुनियावी और सांसारिक मामलों के बारे में बातचीत करना, ये भी मकरूह है। एक मुसलमान को ये शोभा नहीं देता है कि वो मस्जिद में बैठ के इस प्रकार के कार्य करे। और जो चीज़ मकरूह है वो ये है कि अगर कोई इंसान मस्जिद का पड़ोसी है, मस्जिद के आसपास उसका घर है, तो उसके लिए ये अच्छा नहीं है कि वो मस्जिद को छोड़ के अपने घर में नमाज़ पढ़े, मगर ये कोई विवशता हो, अगर विवशता है तो ये मकरूह नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर इंसान विवश नहीं है, अख्तियार है, तो उसको चाहिए कि वो घर के बजाय मस्जिद में नमाज़ पढ़े। तो ये वो चीज़ें थीं जो हमने आपके सामने बताई मस्जिद से मकरूह होने के संबंध में। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो मस्जिद में मकरूह हों, लेकिन हमने संक्षेप में आपके सामने कुछ चीज़ों को बताया जो मकरूह हैं। इसके बाद एक चीज़ और आती है जो कभी कभी, जैसे कि हमने आपको सामने बताया कि नमाज़ पढ़ना या मुस्तहब होता है या वाजिब होता है, लेकिन कभी कभी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान को नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए और नमाज़ पढ़ना वहाँ पर मकरूह होता है। उनमें हम दो चार बातें आपके सामने बयान करेंगे, उसके बाद हम अज़ान और इकामत के मसाइल के बारे में बातचीत करेंगे और दूसरे मसाइल के बारे में हम आपके सामने कुछ बातें पेश करेंगे। तो जो चीज़ें, जो स्थान मकरूह है कि जहाँ पर नमाज़ पढ़े, वो सबसे पहला स्थान हमाम में इंसान को नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, या वो स्थान जहाँ पर नमक है यानी नमकदार जगह, इस प्रकार की जगहों पर इंसान को नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, मकरूह है। सड़कों पर, गलियों में, कूचों में, इस प्रकार के स्थान, इस प्रकार की जगहों पर इंसान को नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, अगर ये लोगों के लिए कष्ट का सबब नहीं बन रहा हो। ध्यान देने वाली बात है, ऐसे स्थानों पर नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, मकरूह है, अगर ये लोगों के कष्ट का कारण ना बन रहा हो। यानी अगर कष्ट का कारण नहीं बन रहा है तब तो मकरूह है, लेकिन अगर कष्ट का कारण बन रहा है तो ये हराम है। हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर सड़कों पर नमाज़ पढ़ने से लोगों की आने जाने में मुश्किल पेश आ रही है, उनको कष्ट हो रहा है, तो नमाज़ पढ़ना हराम है। लेकिन अगर नमाज़ पढ़ रहा है एक व्यक्ति, एक मुसलमान, तो उसकी नमाज़ बहरहाल बातिल नहीं है, नमाज़ सही होगी, हराम कार्य करने के कारण उसने पाप बहरहाल किया है। इसी प्रकार नमाज़ पढ़ना ऐसे स्थानों पर जहाँ पर आग जल रही हो, जैसे किचन में, बावर्ची खाने में, इस ऐसी जगहों पर, या तंदूर के सामने, ऐसी जगहों पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। दो कब्रों के बीच में नमाज़ पढ़ना मकरूह है, खुद कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ना मकरूह है। ये वो सब चीज़ें हैं जहाँ, ये वो स्थान है जहाँ पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है, और एक मुसलमान को कोशिश करना चाहिए कि ऐसे स्थानों पर नमाज़ ना पढ़े। तो ये वो अहकाम थे जो मस्जिद से संबंधित थे। हमने इस अपने प्रोग्राम में 2-3 बातें आपके सामने पेश की कि मस्जिद से संबंधित कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो मुस्तहब हैं, मस्जिद से संबंधित कौन से ऐसे कार्य हैं जो मकरूह हैं, और कहाँ पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है और इंसान को नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम आपके सामने अज़ान और इकामत से संबंधित कुछ मसाइल को आपके सामने पेश करेंगे। अज़ान और इकामत के लिए सबसे पहली चीज़ यह है कि कोई भी नमाज, नमाज यौमिया, जिसको हम पंजगाना नमाज कहते हैं, पांचों वक्त की नमाज के अतिरिक्त कोई भी ऐसी नमाज नहीं है जिसमें अज़ान और इकामत हो। सिर्फ एक ही, ये जो पांच वक्त की सुबह, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, ये जो नमाज़ें, सिर्फ यही नमाज़ें हैं जिसमें अज़ान और अकामत कही जाती है। इसके अलावा इस्लाम में कोई ऐसी नमाज़ नहीं जिसके लिए अज़ान और अकामत कही जाती हो। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और मुस्तहब है कि जब इंसान नमाज़ यौमिया, पंजगाना नमाज़ें, रोज़ाना की नमाज़ें पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा है तो उसको चाहिए कि अज़ान और अकामत कहे, उसके बाद अपनी नमाज़ को आरंभ करे। और दूसरी बात यह है कि जिस समय इंसान नमाज पढ़ना चाह रहा है उस समय अज़ान और अकामत कहे। अगर नमाज के अलावा, नमाज के अतिरिक्त अज़ान और अकामत कहता है तो उसकी अज़ान और अकामत सही नहीं है, यानी ये नमाज के लिए किफ़ायत नहीं करेगी। यानी हम 1 घंटा पहले अज़ान और अकामत कहें उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ना चाहें, तो अगर हम उस समय नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए आवश्यक ये होगा कि हम दोबारा उसी अज़ान और अकामत को कहें, फिर नमाज़ को पढ़ें। और एक बात जो ध्यान रखने वाली है, जिस समय इंसान अज़ान और अकामत कह रहा है वो ये है कि अज़ान और अकामत के जो जुमले होते हैं उनके बीच बहुत अधिक फासला नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि अगर अल्लाह अकबर पहला कहा तो दूसरा अल्लाह अकबर इतनी देर लगा दी कि सुनने वाला कहे कि ये अज़ान और अकामत नहीं लगती। अगर बहुत ज़्यादा फासला हो जाता है तो ये सही नहीं होगा, उसको दोबारा अज़ान और अकामत कहनी होगी। यानी बहुत ज़्यादा फासले वाली अज़ान और अकामत मान्य नहीं है। और एक बात यार, अगर कहीं नमाज जमात हो रही है, किसी मस्जिद में अगर नमाज जमात हो रही है, कोई इंसान वहाँ पहुँचता है, तो अगर उस नमाज जमात के लिए पहले से अज़ान और अकामत कही जा चुकी है तो अब उसको दोबारा अज़ान और अकामत कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसी अज़ान और अकामत को आधार बनाते हुए इंसान सीधे नमाज में प्रवेश कर सकता है, सीधे नियत करके नमाज अपनी आरंभ कर सकता है। और इसी में एक चीज़ जो मुस्तहब है वो ये है कि जो मस्जिद का मुअज्ज़िन है, जो अज़ान देता है, उसको ऐसे व्यक्ति को अज़ान के लिए चुना जाए जिसकी आवाज़ ऊंची हो, लोग सुन सकते हो, खुद आदिल हो और वक्त को पहचानता हो। ये वो सिफात हैं जो एक मुअज्ज़िन के अंदर होना चाहिए। इन गुणों का होना आवश्यक है जिस समय एक मुअज्ज़िन का चुनाव किया जा रहा है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसी में अज़ान और इकामत से संबंधित एक अंतिम मसला आपके सामने पेश कर दूं, उसके बाद हम अपने इस अध्याय को बंद कर देंगे, कि ये हमारे मुस्लिम समाज में होता भी है। वो ये है कि जिस समय कोई बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो उसके लिए मुस्तहब ये है कि उसके दाहिने कान में अज़ान कही जाए और बाएं कान में अकामत कही जाए। तो ये वो अहकाम थे जो अज़ान और अकामत से संबंधित थे। अब इसके बाद चूँकि हमारे पास थोड़ा समय बचता है, लिहाजा हम अब यहाँ से एक और नए अध्याय को खोलेंगे, वो है नमाज के वाजिबात, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नमाज में वाजिब हैं। इसके बारे में हम आपके सामने बातचीत करेंगे और कुछ मसलों को आपके सामने यहाँ पर बयान करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास जो और मसाइल बचेंगे उनको हम अपने अगले किसी प्रोग्राम में बयान करेंगे। तो हर मुसलमान ये जानता है कि हमारी नमाज जो है वो शुरू होती है जैसे ही नियत के बाद हमने तकबीरतुल इहराम कही, वहाँ से नमाज हमारी आरंभ होती है, और जैसे ही सलाम कहा वहाँ पर नमाज समाप्त होती है। तो ये दो चीज़ों के बीच में जो चीज़ें आएंगी वो हमारी नमाज कहलाई जाती है। और नमाज में दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं, यानी पूरी नमाज जिसमें जो कुछ भी किया जा रहा है वो या तो वाजिब है या मुस्तहब है। और जो चीज़ें नमाज में वाजिब हैं, जिसको अगर हम कहें, अगर हम गिनती में बयान करें तो 11 चीज़ें ऐसी हैं जो नमाज में वाजिब होती हैं। लेकिन वाजिब में एक चीज़ का ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो ये है कि जो वाजिब चीज़ें हैं जिसको वाजिबात नमाज कहा जाता है, वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ वो हैं जो रुकन हैं, कुछ वो हैं जो गैर रुकन हैं। हम यहाँ पर आपके सामने सिर्फ गिनती के तौर पर बता दें, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि रुकन किसे कहते हैं और गैर रुकन क्या होता है। तो वो चीज़ें जो रुकन हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है नियत, उसके बाद तकबीरतुल इहराम, उसके बाद क़याम, उसके बाद रुकू, उसके बाद सजदे। तो ये वो चीज़ें हैं नमाज में जो रुकन हैं, यानी जिसको कहा जाए नमाज की असल हैं ये चीज़ें जो हमने आपके सामने बयान की। उसके बाद गैर रुकन, गैर रुकन में करात आती है, ज़िक्र आता है, तशहुद आता है, सलाम आता है, तरतीब और मवालात आते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो गैर रुकन है। अब हम आपके सामने बता दें कि रुकन किसे कहते हैं और गैर रुकन क्या होता है। रुकन अगर उसको हम अपने आम भाषा में बयान करना चाहें तो रुकन नमाज की वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक नमाज का आधार है, यानी नमाज की बेस हैं, असल चीज़ें हैं नमाज की। और ये वो चीज़ें होती हैं कि अगर इनको इंसान नमाज में छोड़ दे तो उसकी नमाज बातिल है, चाहे वो भूले से छोड़े और चाहे जानबूझ के छोड़े। तो ये वो चीज़ें हैं जो रुकन हैं। जैसे अगर इंसान नमाज में रुकू को भूल गया या जानबूझ के रुकू को छोड़ दे, चूँकि ये रुकन है लिहाजा उसकी नमाज बातिल है, चाहे भूले से छोड़ा हो चाहे जानबूझ के छोड़ा हो। उसके अलावा जो कार्य हैं, यानी जो पांच चीज़ें हमने आपको बताई वो रुकन, उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो गैर रुकन हैं। गैर रुकन वो चीज़ें होती हैं जिनको अगर इंसान भूले से अंजाम दे दे तो उसकी नमाज बातिल नहीं होती। हाँ, अगर जानबूझ के अंजाम दिया जा रहा है तो वो चीज़ उसकी नमाज उसकी बातिल हो जाएगी, लेकिन भूले से अंजाम देने पर बातिल नहीं होगी। तो ये वो अहकाम थे जो रुकन से संबंधित थे, यानी वाजिबात अहकाम से संबंधित, जो हमने आपके सामने बयान किए। अगर इस प्रोग्राम का हम सारांश बयान करना चाहें तो हमने आज के प्रोग्राम में कुछ बातें आपके सामने बयान की। सबसे पहली चीज़, मस्जिद में क्या चीज़ें मुस्तहब हैं, उसके बाद मस्जिद में क्या चीज़ें मकरूह हैं और कौन से स्थानों पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। उसके बाद हमने आपके सामने अज़ान और इक़ामत के मसाइल बयान किए, और उसके बाद अंत में हमने जो अध्याय खोला वो वाजिबात नमाज के बारे में था। इसमें हमने आपके सामने कुछ मसाइल को बयान किया। आगे भी ये हमारा बाब चलता रहेगा, हम इसी के बारे में बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अपने इस प्रोग्राम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।